ओम शांति। मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है और आज मार्गदर्शन में हमारे बीच उपस्थित हैं अपने अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाओं और अपनी समस्याओं के साथ चार्टर अकाउंटेंट। और आज वित्त प्रधान समय में, अर्थ प्रधान समय में वित्तीय अनियमितता कहीं हो नहीं, इसलिए भी इन लोगों की महती भूमिका होती है। और इन लोगों की दृष्टि से जहां कहीं भी अकाउंटेंसी का काम संपन्न होता है, निश्चित रूप से वहां अगर कहीं कोई झूल झक्कड़, कोई गड़बड़ी है तो उसका भी खुलासा होता है। एक मजबूत तैयारी और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए निरंतर कठिन उपलब्धि के रूप में इस चार्टर अकाउंटेंसीशिप को प्राप्त करके यह समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। और आज मार्गदर्शन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी परमादरणीय रानी दीदी उपस्थित हैं। दीदी, मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका सत सत अभिनंदन है और साथ ही साथ तमाम चार्टर अकाउंटेंट बंधुओं का स्वागत है। वित्त की अनिवार्यता, उसकी महत्ता और उसमें कदाचित होने वाली विभिन्न संगठनों के द्वारा जो गड़बड़ी होती है, तो ये सबको कैसे कोई व्यक्ति स्वयं को संतुलित रखते हुए इसको सुव्यवस्थित रखे और ये लोग भी जब इस भूमिका में आए तो ईमानदारी से काम करते हुए भी किसी का अहित न हो, इसका भी किस तरह से ध्यान रखें। और इनकी व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं वे तो आपके समक्ष रखेंगे ही। क्या यह जीवन अर्थ के लिए है या अर्थ संपूर्णतः जीवन को निगल जाने के लिए है, इन बिंदुओं को केंद्र में रखकर पहले तो आपका मार्गदर्शन चाहिए, फिर इनकी समस्या का समाधान।
आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका कार्य जो हर एक को प्रॉफिट की ओर ले जाना है, हर एक को प्राप्ति की ओर ले जाना है, ये हिसाब किताब के जो कार्य हैं, ये करते हुए हर एक को ये प्रेरणा मिलती रहे कि किस तरह से हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में कार्य करते हुए हमारी अंतर आत्मा उस हिसाब किताब को भी जान जाए जिसके आधार से संसार चल रहा है। कौन सा हिसाब किताब? वो कर्मों का हिसाब किताब। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, ये सृष्टि का अटल नियम है, एक अटल सिद्धांत है। लोगों ने समझा था कि भगवान हमारे को देखता है हम क्या कर रहे हैं और उसको उसका फल देता है, लेकिन भगवान ने सृष्टि का नियम बना दिया कि मैंने तुमको स्वतंत्रता प्रदान की है, जो चाहे करो, भगवान रोकता नहीं है। हर एक को विवेक प्राप्त है, हर एक को बुद्धि है, अपनी बुद्धि से जैसा चाहे कर्म कर सकता है, लेकिन बंधन कहाँ है? जब उसको फल भोगना पड़ता है, वहां बंधा हुआ है। इसलिए भगवान को ज्ञान देना पड़ता है, कर्मों का ज्ञान देना पड़ता है, किस कर्म से कितना लाभ प्राप्त हो सकता है और किस कर्म से कितना नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसे पुण्य कर्म है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म है जो यहाँ भी मनुष्य को तनाव से मुक्त रखते हैं, जो यहाँ भी मन को शांति प्रदान करते हैं। अगर हम सबको शांति देना चाहते हैं, अगर हम सबको संतुष्ट करना चाहते हैं, अगर सबको सुख देना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, हमारे अंदर भरा होना चाहिए। ये भरपूर कैसे करें, खजाना कैसे भरें, जो अपने आप सबको मिलता रहे, ये विधि जो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्राप्त होती है, ये उसका केंद्र है। आज मनुष्य जो चाहता है कर रहा है, कर रहा है या नहीं? पाप करने वाला चाहता है कर रहा है, पुण्य करना चाहता है पुण्य कर रहा है, किसी को किसी ने रोका नहीं है। कहीं कोई मजबूर नहीं है। हमारी आंतरिक इच्छा क्या है, हमारी समझ क्या है, उस पर डिपेंड करता है हम कर क्या रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अगर हमें ये कर्मों के हिसाब किताब का ज्ञान हो जाए तो हम समझते हैं कि हम मानसिक रूप से शांति और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथियों को दे सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं, अपने समाज को दे सकते हैं, अर्थात सबको खुशहाल रख सकते हैं।
हम समाज में न किसी को मुद्रा राक्षस बनने दें और न ही स्वयं मुद्रा राक्षस बन जाएं। हमें अपनी अपने मन की मुद्रा का उन्नयन करना है और उसे साधते हुए आत्मा के पास ले जाना है और आत्मा के माध्यम से हम परमात्मा का साक्षात्कार करें, उनकी अनुभूति करें, अर्थात सद प्रवृत्तियों को, सकारात्मकता को हम अपने भीतर सन्निहित करें। हम इन अंकेक्षकों से मिलते हैं और इनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं।
मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार प्रसून है। अनेकों लोगों से ऑफिस में मिलना होता है, अनेकों अपने अंदर कार्य करते हैं, लेकिन सबको संतुष्ट रखते हुए किस तरह से अच्छा कार्य, क्योंकि सभी कार्य खुद नहीं करते हैं, स्टाफ के द्वारा माध्यम से भी किया जाता है, वो भी सही तरीके से करें, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है, इस पर प्रकाश डालें।
जो हमारे अंडर काम करने वाले हैं वो हमारे को अपने कार्य द्वारा संतुष्ट करें, औरों को भी संतुष्ट करें। इसकी विधि ये है, उनको अपना परिवार माने। आपके पास अगर 15-20 लोग काम करते हैं तो 15-20 परिवार को आप पाल रहे हैं। आपके यहाँ से जो धन उनको मिलता है, जो सैलरी मिलती है, उसी से वो परिवार पल रहा है। तो पहले तो उनको अपना मान ले, ये हमारे हैं, और उनसे काम तो करवाएं ही, लेकिन उनके ऊपर एक मीठी नजर जरूर रखें, एक प्रेम भरी नजर जरूर रखें, उन्हें अपनेपन की अनुभूति जरूर करवाएं। और एक बार उन सबको बिठाकर वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा जरूर करें। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, उसी आधार से शरीर चलता है, ऐसे बुद्धि को प्रशंसा की खुराक चाहिए। आप जब वो गलती करते हैं या जो काम समय पर नहीं करते हैं, उस दिन तो आप उनको टोकते हैं, और जिस दिन सब कुछ एक्यूरेट करते हैं उस दिन आप चुप रहते हैं। उस दिन भी उन्हें अच्छा अच्छा कहें, उन्हें शाबाशी दें, आज आप बहुत निश्चित समय पर आए और सारा काम आपको जो दिया गया आज आपने बहुत अच्छा किया, ये कहना भूले नहीं। ऐसा मान कर कहें कि ये उनकी बुद्धि का भोजन है। हम समझते हैं कि ये प्रशंसा उनके अंदर एक शक्ति को जगा देगी, एक उत्साह को जगा देगी कि वो आपको, आपके दिए हुए कार्य को एक्यूरेट वो करके दिखाएं। आप कितना ही पैसा दे दें, कितने ही उपहार दे दें, लेकिन आपके प्रशंसा के बोल जो उनके अंदर शक्ति भरेंगे, जो उनके आंतरिक खुशी प्रदान करेंगे, वो किसी वस्तु से नहीं मिल सकती। ऐसा शायद आप भी अनुभव करते होंगे।
अपने सहयोगियों के मनोबल को हम हमेशा बढ़ाएं और उनके सद्गुण की निरंतर चर्चा करें, ताकि उनका आत्मविश्वास और बढ़े और काम में सक्रियता भी बढ़ती चली जाए। आपसे जानना चाहते हैं आपका प्रश्न।
मैं ये जानना चाहता हूं कि इस भागदौड़ वाले जीवन में, काम के प्रेशर में, कैसे जो टेंशन तो होता ही है, तो इससे तुरंत छुटकारा पाने का कौन सा उपाय है, सरल तरीका है, जो जिससे मन को शांति भी मिले और शरीर में एक ऊर्जा भी संचारित फिर से होना शुरू हो।
आप जानते हैं आपका जो कार्य है वो टेंशन वाला ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा एकाग्रचित होकर आपको अपना कार्य संपन्न करना पड़ता है। ये कार्य करते हुए एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करें जो बीच बीच में कार्य करते हुए, बीच बीच में 2 मिनट के लिए अपने आप को उस कार्य से मुक्त कर लें, और अपने आप को ऐसा सोल कॉन्शियस करें, ऐसा परमात्मा की स्मृति में आए कि आप लाइट हो जाएं, आपको लगे कि ये सब कार्य इजी है, सब सहज हो जाएगा। और अपने काम करने वालों पर विश्वास रखें और विश्वास के बोल उनको बोलते भी रहें। कार्य ऐसा करें जैसे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने मन बुद्धि को लाइट करने की एक ऐसी कला आ जाए जिससे ये शब्द ही छूट जाए कि मुझे टेंशन होता है। आप जानते हैं आपके चारों तरफ टेंशन की ही काम है, उसमें भी टेंशन के बदले अटेंशन रखें। अब आगे से कहिए मुझे अपने कार्य पर विशेष अटेंशन रहता है। टेंशन रहता है ये बोल नहीं छोड़ते।
तनाव पर तनाव के साथ तनावपूर्ण प्रश्न का भी दीदी जिस सादगी के साथ और जिस तनाव मुक्तता के साथ उत्तर देती है, ये निश्चित रूप से ब्रह्मा बाबा के द्वारा संस्थापित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विशिष्टतम साधना और पवित्र वातावरण शुभ विचारों से भरा हुआ परिवेश उसकी अन्यतम उपलब्धि है।
मैं दीदी ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे ऑफिस में विभिन्न वर्ग के विभिन्न जाति धर्म हर तरह के लोग आते हैं और बहुत से लोग हमसे बहुत तरह की अपेक्षाएं रखते हैं, हर एक की अपेक्षा पे खरा उतरना कहां तक संभव है? और अगर हम किसी की अपेक्षा पे पूरे नहीं उतरते हैं और फिर जो तनाव जो वो स्थिति क्रिएट हो जाती है, इससे किस तरह से निकला जा सकता है?
जो भी आपके ऑफिस में आते हैं वो तो अपना कार्य ही करवाना चाहते हैं, उसके अलावा कोई और उनको आपसे अपेक्षा नहीं होगी। तो अगर आप अपने कार्य को जितने सुचारू रूप से कर रहे हैं वो करें और साथ साथ उनको ये भी समझाते जाएंगे, जरूर समझाते ही होंगे कि कौन सा कार्य किस तरीके से किया जाएगा, कैसी समस्या आ जाए, मन हमारा बैलेंस में रहे। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन उसे ऊपर उठा हुआ रहता है, इसी हर जगह देवी देवताओं का चित्र कमल पुष्प के ऊपर दिखाते हैं। कोई कमल पुष्प के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। कमल पुष्प के ऊपर दिखाने का अर्थ है लाइट और डिटैच। इसी तरह से आप हरे के प्रति सहयोग की भावना है, हरे को संतुष्ट करने की भावना है, फिर भी कोई समस्याएं आती हैं तो आप कार्य भी करें और समस्या तो आएंगी ही, मान कर चले कि दवा की गोली और अपमान निगल जाने के लिए है, चूसने के लिए नहीं। दवा की गोली अगर आप चूसेंगे मुंह कड़वा हो जाएगा। ऐसे किया हुआ किसी का अपमान, किसी का गलत व्यवहार अगर आप बार बार मन में रिवाइज करेंगे तो आपका मन कड़वा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। उसको भी ऐसे ही निगल जाना है जैसे दवा की गोली।
साहस और निष्ठा के साथ हमें हमेशा उचित के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और काम हमें ईमानदारी के साथ निरपेक्ष होकर निपटाना चाहिए। किसी की गलत अपेक्षा पर अगर हम खड़ा न उतरते हैं तो इसमें उसका दोष है। हमें हर स्थिति में संतुलित होकर कार्य करना चाहिए।
मैं ललित कुमार केजरीवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो ड्यूटीज हैं उसमें एक यह भी है कि हमें ऑडिट करनी होती है। जो हमसे ऑडिट कराते हैं उनकी अपेक्षा है कि हम उन्हें क्लीन रिपोर्ट दें जिसमें किसी भी तरह का कोई गलती मिले भी तो हम उन्हें नहीं दें। अब एक तरफ तो हमें हमारे अपने जो कानून है अपने जो उसके हिसाब से हमें जो भी गलती पकड़ी है उसको हमें साफ साफ लिखना है। अब उस हालत में हमारे पास एक ही बात रहती है कि या तो हम अगले साल इस फल के लिए तैयार रहें कि वो हमें अपॉइंट नहीं करेंगे, या फिर हम उनके साथ उनकी बातों में आकर के क्लीन रिपोर्ट दे दें जो हमारा मन नहीं मानता। ऐसे अंतर्द्वंद जब रहता है तो हम क्या करें?
आपका तो कर्तव्य है कि जो भी है उसमें दोनों को प्रसन्न करना, जिसका कर रहे हैं थोड़ी उनकी भी बात रखते हैं और जो कानून है उसकी भी बात रखते हैं। आपके जो कार्य करने की विधि है, जो पद्धति है, उसमें आप उसके अनुकूल ही कार्य करें, लेकिन आपका अपना मन संतुष्ट हो कि आपने जैसा उचित है वो कार्य किया। तो आज के समाज में हर एक चाहता है कुछ मुझे विशेष प्रॉफिट हो, मुझे नुकसान ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत टैक्स लेती है, इसलिए हम कहेंगे कि आप उसके अनुसार कार्य करें और साथ साथ उनको प्रसन्न भी करें, दोनों बातों का बैलेंस लेकर चलें। अगर आध्यात्मिक शक्ति है तो मन बैलेंस में रहेगा, मन बैलेंस में रखकर थोड़ा आप उनको गाइड करेंगे कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, जैसा कि आप करते ही हैं। तो हम समझते हैं कि अगर हम ऐसा संतुष्ट करने का लक्ष्य रखते हैं तो हम समाज के अंदर हर एक को संतुष्ट भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें ये महसूस हो कि हमें इनका सहयोग और गाइडेंस अच्छी प्राप्त हुई है।
हमारा ध्यान अपनी ईमानदारी और दूसरों की प्रसन्नता पर भी हो और साथ ही साथ हम हर स्थिति में एक संतुलन बनाए रखें और सकारात्मकता के पक्ष में निरंतर हमारा होना ही सबके साथ सद्व्यवहार को तय करता है।
सभी समस्याओं का जो समाधान है यह हमें लगता है कि अगर अपनी पहचान हो जाए, अपनी आत्मा की, परमात्मा की, कर्मों की के फल के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, ये जो ये ड्रामा है उसमें हम पार्ट अदा कर रहे हैं, तो ये सब अगर ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम चाहेंगे रानी दीदी से कि जो इसको कैसे हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये ज्ञान हासिल कर सकते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश देंगे।
पार्ट बजाते हुए अगर हमें अपना वास्तविक रूप याद रहे कि वास्तव में हम कौन हैं और हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, वास्तव में कौन है, एक तो ये शरीर है, अपने आप को क्या मानते हैं, जब मैं कहते हैं तो यही शरीर सामने आता है, यही मैं हूँ, यही आता है ना, लेकिन इस शरीर में कहीं मैं है, मेरी आंख है, मैं आंख तो नहीं कहते हैं, ये मेरा कान है, मैं कहाँ हूँ, मैं आंख से देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं आंख नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ये आत्म अनुभूति अगर हमें हो जाए कि आत्मा ने शरीर रूपी चोला धारण किया है कर्म करने के लिए, इस सृष्टि रूपी ड्रामा के स्टेज पर आए हैं, भिन्न भिन्न रोल मिला हुआ है, एक पार्ट बजा रहे हैं, पार्ट बजाते हुए अपने ओरिजिनल को याद रहे, ओरिजिनल रूप याद रहे, तो ओरिजिनल आत्मा के जो गुण है वो हमारे अंदर जागृत होंगे। लेकिन अपने आप को पंच तत्वों का भौतिक शरीर मानने के कारण मनुष्य इस देह अभिमान में आ गया है, मैं इस मैं में फंस गया है, इसलिए अनेक विकृतियां उत्पन्न होती हैं देह अभिमान के कारण। हमें ऐसी आत्म अनुभूति चाहिए, हमें ये ज्ञान चाहिए कि हम इस ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं, हमारा पार्ट एक्यूरेट हो, क्योंकि स्व स्थिति से ही परिस्थितियों पर विजय पानी है। अगर हमारी स्थिति मजबूत नहीं है तो परिस्थिति हम पर हावी हो जाएगी और हमको डिस्टर्ब कर देगी, क्रोध समाधान नहीं है। हम देखते हैं क्रोध से काम बिगड़ जाते हैं, बनता काम बिगड़ जाता है, जो व्यक्ति काम करने आया है वो हमारे क्रोध से भाग जाता है, काम छोड़ देता है, एक अच्छा व्यक्ति काम करने वाला अपने हाथ से चला जाता है क्रोध के कारण। इसलिए अगर हम समझ लें कि मैं आत्मा हूँ और मेरा गुण शांति है तो हम हर समस्या का समाधान शांति से करें, प्रेम से करें, क्रोध से न करें। हम अपनी विधि बदल दें, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, हमारे देखने का तरीका बदलेगा, हमारा व्यवहार बदलेगा, हम अपनी हर समस्या का समाधान प्रेम और शांति से कर सकते हैं।
जीवन के लिए पैसा अनिवार्य है, हो सकता है, लेकिन जीवन संपूर्णतः पैसों के लिए नहीं होता है। हमें इससे बचते हुए अपनी आत्मा का भी सम्मान करना चाहिए, हमें स्वमान में जीना चाहिए और जीवन जीने की कला को निरंतर विकसित करना चाहिए। जीना भी एक कला है, इसे बिना जाने अनजाने मानव बनने कौन चला है। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करके हमें परमात्मा की इच्छा के अनुरूप निरंतर काम करना है और काम करना है इस प्रकृति के लिए, धरती के लिए और तमाम प्राणियों के लिए, अर्थात शुभ और भाव के साथ हमें निरंतर इस सृष्टि में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। आपसे भी तो बहुत की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, हम स्वयं किसकी अपेक्षा पर कितना उतरते हैं और जब न उतरते हैं तब हमारे भीतर किस तरह का को होता है, यह भी तो एक प्रश्न हो सकता है। और साथ ही साथ इससे इतर भी आपकी जिज्ञासा, आपका प्रश्न, आपका दुख, आपकी दुविधा और प्रश्नोत्तर में दीदी उपस्थित।
मेरा नाम गोपाल प्रसाद तुलस्यान है। जब समाज के बीच में हम बैठते हैं तो सामाजिक समस्याओं की चर्चाओं पर हम अपने उपदेश या अपने सुझाव बड़े ही अच्छे ढंग से और एक एथिकल मैनर में देते हैं, लेकिन जब उस तरह की समस्याएं हमें खुद को घेरती हैं तो उसके होने वाले भयावह परिणाम को देखकर हम उसका मापदंड बदल देते हैं। तो मनुष्य में ये कमजोरी क्यों आती है और कहां तक इस कमजोरी का सामना मनुष्य कैसे करे, ये जानना मनुष्य को एक बल दे सकता है जिससे समाज का भी भला होगा और मनुष्य में भी आत्मशुद्धि होगी।
हम ये समझते हैं कि जो भी बात हम जानते हैं किसी समस्या का समाधान ये है, वो समाधान पहले हम करके देखें, हम उस स्थिति में स्थित होकर उस समस्या का समाधान करें। समस्या का समाधान के रूप में अगर हम देखेंगे तो केवल अपने विचारों को ऊंचा उठाने की जरूरत है। एक व्यक्ति का व्यवहार आपको पसंद नहीं आता, आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसके बातों से, उसके व्यवहार से क्रोधित होते हैं, लेकिन जब आपके मन में उसके प्रति एक ऐसा भाव जागृत हो जाए कि व्यक्ति तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके स्वभाव में ये क्रोध का अवगुण है, इसे मिटाना है। व्यक्ति अच्छा है ये अवगुण मिटाना है। आपने एक शुभकामना की और जब क्रोध कर रहा है आप शांत हैं क्योंकि आपकी दृष्टि में उसके कल्याण का भाव है, उसके प्रति रहम का भाव है। वो क्रोध कर रहा है आप साक्षी होकर देख रहे हैं, उसके प्रभाव से उसके क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है, वो भी प्रेम से बोलने की कला जान जाता है। समस्या आई और आपने करके देखा, आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया, पहले क्रोध आता था अब रहम आ रहा है, अब दया आ रही है, आप सोचते हैं ये व्यक्ति इतना अच्छा है, इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी है लेकिन ये बड़ा दुर्गुण है, इसको मिटाएंगे। कैसे मिटाएंगे? आपके मन की शुभावना, आपके मन की शुभकामना और आपका मीठा व्यवहार उसको प्रभावित करता है। क्रोध से क्रोध नहीं मिट सकता, क्रोध से द्वेष नहीं मिट सकता, वैर विरोध नहीं मिट सकता। उसके लिए जब हमारे अंदर प्रेम की शक्ति जागृत हो जाए और शुभावना की शक्ति जागृत हो जाए, इस तरह से अनेका अनेक समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारे ऊंचे विचार उसको बदल सकते हैं। तो ये एक एक काम खुद करके देखना है। पहले हम चाहते थे वो बदल जाए तब हमारी समस्या मिट जाएगी, वो बदल जाए तब समस्या मिट जाएगी, अब हम क्या सोचते हैं हम बदल जाए, हमारे देखने का तरीका बदल जाए, हमारे विचार ऊंचे उठाना है। एक बार की बात है, किसी ने बड़ी दादी से पूछा कि हम किसी के लिए बहुत शुभावना रखते हैं, बहुत शुभकामना करते हैं, वो लेना ही नहीं चाहता। तो दादी ने कहा सुबह का समय है, सूर्योदय हो गया है, कोई कितने खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे तो भी कहीं ना कहीं सुराख में से धूप अंदर जाती है, जहां धूप को मौका मिलता है उतना अंदर जाती है। इसलिए अब ये ना सोचो कि वो नहीं ग्रहण करेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रवेश करेगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या करें हम, ये भी ट्रेनिंग है। किस परिस्थिति में हम कितना ऊंचा सोचें, जिसका प्रभाव ऑटोमेटिक दूसरे पर जाता है, सिखाना नहीं पड़ता है, अपने आप सीख जाता है, अपने आप प्रेरणा ले जाता है। अगरबत्ती जल रही है, खुशबू फैलानी थोड़ी पड़ती है, अपने आप फैल जाती है। दीपक जलता है, अपने आप रोशनी देता है। हमें केवल अपने को खुशबूदार बनाना है, खुशबू अपने आप फैलेगी। ऐसा स्वचिंतन, ऐसा स्वदर्शन, स्वपरिवर्तन, स्वस्थिति, सब कुछ अपने स्वयं को करना है। और जैसा हम करेंगे, हमको देखकर दूसरा भी करेगा।
यह सही है कि कीचड़ से कीचड़ जिस तरह से साफ नहीं किया जा सकता, उसी तरह से क्रोध का जवाब नहीं हो सकता। परमादरणीय रानी दीदी ने जिस तरह से उलझे प्रश्नों को, जटिल प्रश्नों को, वैयक्तिक और सार्वजनिक प्रश्नों को उज्ज्वलता का मार्ग निर्देशित किया, हम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के लिए यह कल्याणकारक है। और जिस दिन हम सकारात्मकता के एक व्यापक विस्तृत परिवेश में आ जाएंगे, जहां मनुष्य मनुष्य का विरोधी न हो, दोस्त हो जाए, सखा हो जाए, बंधु हो जाए, अभिभावक हो जाए, संरक्षक हो जाए, उसी दिन समझ लेंगे हम हमें परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। दीदी, आपके प्रति बहुत बहुत आभार, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक रोशनी प्राप्त की, और निश्चित रूप से आपके मन पर छाया हुआ अंधकार इस ज्ञान की रोशनी से दूर होगा। हम प्रार्थना भी करते आए हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असलो मा सदगमय, मृत्योर मा अमृतगमय। यह अमृतमय विचार हमारे मृत भाव को निश्चित रूप से संजीवनी प्रदान करने में सक्षम है। ओम शांति।